على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو پیج نمبر 210 کے اوپر ہیں، ہم احکام حجاب پڑھ رہے ہیں، نزول حجاب کی تاریخ. اس میں ہم نے یہ ایک امپورٹنٹ بات پڑھی تھی کہ یہ جو عورتوں مردوں کے درمیان بے محابہ اختلاط ہے اور بے تکلف ملاقات گفتگو، تو اس کا رواج شریف اور نیک لوگوں میں کبھی بھی نہیں تھا، اور جو بہت ہی برے معاملات بیان کیے جاتے ہیں زمانۂ جاہلیت کے، تو وہ جو معاملات تھے وہ لونڈیوں اور آوارہ عورتوں کے معاملات تھے. اس زمانے کے بھی شریف خاندانوں میں ایسا نہیں تھا. تو پردہ اگرچہ کہ حکم تو اس کا 5 ہجری میں اس واقعے کے تحت ہی آیا، لیکن صحابیات جو ہیں اس سے پہلے بھی پردے کا اہتمام جتنا کر سکتی تھیں اتنا کرتی تھیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ حیا تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر رکھی ہوتی ہے. تو اس کے بعد اگلے پیج پر یہ تھا کہ پردے کے متعلق جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ لا تدخلوا بیوت نبی والی ہی آیت ہے، جو کہ سورہ احزاب کے اندر جس کے تحت ہم ساری ڈسکشن کر رہے ہیں. تو آیت مذکورہ میں عورتوں کو پس پردہ رہنے کا حکم دیا، اور مردوں کو حکم یہ ملا کہ اگر ان سے کوئی چیز مانگنا ہے تو وہ پردے کے پیچھے سے مانگے. پہلے یہ پردے کے پیچھے والا کانسیپٹ نہیں تھا. اس سے پردے کی خاص تاکید پائی گئی کہ بلا ضرورت تو مردوں عورتوں کو الگ ہی رہنا ہے، ضرورت کے وقت ان سے بات کرنا ہو تو پس پردہ کر سکتے ہیں. قرآن کریم میں پردہ نسواں اور اس کی تفصیلات کے متعلق 7 آیتیں نازل ہوئی ہیں، 4 سورہ احزاب میں، 3 سورہ نور میں گزر چکی ہیں. ان پر سب کا اتفاق ہے کہ پردے کے متعلق سب سے پہلے نازل ہونے والی یہی آیت ہے، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. سورہ نور کی 3 آیتیں اور سورہ احزاب کی شروع کی آیت جس میں ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھیں، ٹھیک ہے، وقرنا فی بیوتکن والی آیت جو پہلے ہم نے شروع میں پڑھی تھی، یہ سب اگرچہ ترتیب قرآن میں پہلے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سورہ نور کون سی سورت ہے؟ سورت نمبر 24، اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33. تو سورہ نور تو قرآن میں جو ترتیب ہے پوری کی پوری سورہ نور سورہ احزاب سے پہلے ہے، اور یہ قرنا فی بیوتکن والی آیت یہ سورہ احزاب میں پہلے آئی ہے، لیکن نزول کی ترتیب ڈیفرنٹ ہے. قرآن کے نزول کی ترتیب میں یہ والی آیت پہلے نازل ہوئی، لا تدخلوا بیوت النبی والی آیت، ٹھیک ہے. تو پردے کے متعلق یہ پہلی آیت نزول کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے. سورہ احزاب کی پہلی آیت میں اس کی تصریح موجود ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا ہے جبکہ ازواج مطہرات کو من جانب اللہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر دنیا کی وسعت چاہتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق لے لیں، اور آخرت کو ترجیح دے کر دنیا کی معیشت میں موجود حالت پر قناعت کریں تو نکاح میں رہیں گی. تو یہ ڈسکشن پہلے کر چکے ہیں. اس اچھا ہاں وہ قرنا فی بیوتکن والی آیت میں یہ تصریح موجود ہے نا کہ جی یہ کانٹیکسٹ تھا اس کے نزول کا، قرنا فی بیوتکن والی آیت کے نزول کا یہ کانٹیکسٹ تھا. اس واقعہ تخیر میں یہ بھی مذکور ہے کہ جن ازواج کو یہ اختیار دیا گیا تھا ان میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت جحش بھی شامل تھی. اس سے معلوم ہوا کہ ان کا نکاح اس آیت سے پہلے ہو چکا تھا، ٹھیک ہے. تو کیا پتہ لگا کہ قرنا فی بیوتکن والا جو حکم آیا تھا نا، تو اس میں چونکہ زینب رضی اللہ عنہا بھی شامل تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نزول حجاب والی آیت ہے اس کا یعنی سوری جو احکام حجاب والی آیت ہے اس کا نزول قرنا فی بیوتکن کے بعد ہوا ہے، ٹھیک ہے، سوری پہلے ہوا ہے. اور قرنا فی بیوتکن کا نزول جو ہے وہ بعد میں ہوا ہے جب شادی ہو چکی تھی زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ. اسی طرح سورہ نور کی آیتیں جن میں پردے کے متعلق تفصیلات ہیں یہ اگرچہ ترتیب قرآنی میں مقدم ہیں، 24वीं सूरत में है, मगर नुजूल के एतबार से वो भी इसके बाद किस्से इफ के साथ नाजिल हुई हैं, जो गजवे बनी बनियल मुस्तलक या मुरैसी से वापसी में पेश आया था। ठीक है, तो वो पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट है जो आपको पता ही है, जो आयशा सिद्दीका के ऊपर बहुतान लगा था, तो वो गजवे से वापसी पर लगा था और वो गजवा 6 हिजरी में हुआ था। ठीक है, और पर्दे शरी के अहकाम इस वक्त से जारी हुए हैं जब हजरत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह में आयत पर्दा नाजिल हुई। ठीक है, जिसके जिसके बारे में मेजोरिटी ओपिनियन ये है कि वो 5 हिजरी के अंदर हुआ था और कुछ उलमा के मुताबिक 3 हिजरी में हुआ था। ठीक है, सूरह नूर की आयात मुतल्लका हिजाब सूरह नूर में गुजर चुकी हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह की तौफीक से उसके बारे में मुफस्सल गुफ्तगू रमजान के महीने में की हुई है। सत्र औरत के अहकाम और हिजाब निसा में फर्क। मर्द औरत का वो हिस्सा का वो हिस्सा है बदन जिसको अरबी में औरत और उर्दू फारसी में सतर कहते हैं, यानी सतर है तो अरबी का लफ्ज, ठीक है ना, लेकिन उर्दू और फारसी में इसको अडॉप्ट किया गया है और उर्दू फारसी में इसको सतर ही कहा जाता है, लेकिन अरबी का जो ओरिजिनल लफ्ज है सतर के लिए वो औरत है, जिसका सबसे छुपाना शरई तबई और अकली तौर पर फर्ज है। ठीक है, यानी सतर का छुपाना हर लिहाज से फर्ज है, शरीयत में भी, तबीयत में भी, इंसान के और अकली तौर पर भी। ईमान के बाद सबसे पहला फर्ज जिस पर अमल जरूरी है वो सतरे औरत है, यानी आजाए मसूरा का छुपाना है। हालांकि हम क्या समझते हैं, जब इंसान मुसलमान हो जाता है तो सबसे पहला फर्ज उसके ऊपर क्या होता है, वो होता है नमाज। ठीक है, लेकिन आलिम की नजर वो जाहिर से पीछे जाती है, ठीक है ना, वो तो डेप्थ में जाता है ना, तो डेप्थ में जाता है तो पता लगता है कि जी नमाज जो है वो सतरे औरत के बगैर हो ही नहीं सकती, तो पहला फर्ज तो सतरे औरत हुआ ना। अलबत्ता नमाज, ये अरकाने नमाज, अरकाने इस्लाम में सबसे पहला रुकन है। ठीक है, अगर अरकान की बात आएगी ना, पिलर्स की, कि जिसके जिसके साथ बिल्डिंग खड़ी होती है इस्लाम की, ठीक है, पिलर्स, तो पिलर्स में से सबसे पहला पिलर नमाज है, लेकिन पिलर के नीचे भी तो कुछ चीज होती है, पिलर की भी तो कुछ बुनियादें होती हैं, राइट, पिलर के लिए भी तो आपको सीमेंट चाहिए होता है, आपको बजरी चाहिए होती है, आपको रेती चाहिए होती है, ठीक है ना, पिलर बनाने के लिए भी तो आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती है ना, ऐसे ही तो नहीं पिलर जो है वो आसमान से आकर के आप खड़ा कर देते हैं इमारत बनाने के लिए। तो गोया कि नमाज वाला जो पिलर है, उस नमाज वाले पिलर को बनाने के लिए सतरे औरत बजरी के मानद है या सीमेंट के मानद है, ठीक है, या उसके अंदर जो वो लोहे की, क्या कहते हैं उसको हमारे यहाँ, खास नाम होता है ना उसका, लोहे की जो सलाखें होती हैं, तो सतर औरत उनकी मानिंद है, उनके बगैर ये पिलर खड़ा ही नहीं हो सकता। अब उसकी तफसील आगे लिख रहे हैं, क्या कहते हैं उस चीज को, काली काली, नाम याद नहीं आ रहा, खैर, ये फरीजा तो इब्तिदाए आफरीनश से फर्ज है, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की शरीयतों में फर्ज रहा है, बल्कि शराए के वजूद से भी पहले, यानी शरीयत कब वजूद में आई थी, शरीयत प्रॉपर जो आई थी वो आपको पता होगा नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में, ठीक है, पहली शरीयत का जो ढांचा एस्टैब्लिश हुआ था वो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में हुआ था। ठीक है, तो शराए के वजूद से भी पहले जब जन्नत में शजर ममनुआ खा लेने के सबब हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का जन्नती लिबास उतर गया और सतर खुल गया, तो वहां भी आदम अलैहिस्सलाम ने सतर खुला रखने को जायज नहीं समझा, हालांकि कोई शरी हुक्म उस वक्त नहीं आया था। इसीलिए आदम और हव्वा दोनों ने जन्नत के पत्ते अपने सतर पर बांध लिए। तफिका यखसिफान अलैहिमा मियू वराकिल जन्ना, वरक कहते हैं पत्तों को, ठीक है, उन्होंने अपने ऊपर बांध लिए जन्नत के पत्ते। तो इसका यही मतलब है, दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम से खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर पैगंबर दीन की शरीयत में सतर छुपाना फर्ज रहा है। आवाए मस्तूरा की तायीन और तहदीद में इख्तलाफ हो सकता है, इसकी हद, इसकी हदूद क्या है, कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, कि सतर कहाँ से कहाँ तक है, मगर असल फर्जियत सतर औरत की तमाम शराए अंबिया में मुसलमा है। ठीक है, अब ये है क्या, इसमें इल्मी इख्तलाफ हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो भी सतर डिफाइन होगा उस सतर का छुपाना फर्ज होगा। ठीक है, तो ये یہ فرض ہر انسان مرد و عورت پر فی نفس ہی عائد ہے، کوئی دوسرا دیکھنے والا ہو یا نہ ہو. یعنی یہ مشروط نہیں ہے کہ جی کوئی دوسرا دیکھنے والا ہو تو پھر چھپانا فرض ہے، اور دوسرا دیکھنے والا نہ ہو تو پھر ستر کھول کر کے رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ فی نفس ہی عائد ہے، کوئی دوسرا دیکھنے والا ہو یا نہ ہو. اسی لیے اگر کوئی شخص اندھیری رات میں ننگا نماز پڑھے حالانکہ ستر چھپانے کے قابل کپڑا اس کے پاس موجود ہو تو یہ نماز بالاتفاق ناجائز ہے، حالانکہ اس کو ننگا کسی نے دیکھا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے نماز کی مثال دے کر کے بات سمجھائی ہے کہ نماز جو ہے وہ ستر کے ڈھانپے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے اگر انسان کے پاس کپڑا موجود ہو. اگر کپڑا موجود ہے ہی نہیں، جیسے کہ وہ ایک صحابہ کا اثر ہے کہ صحابہ کرام کشتی میں جا رہے تھے اور کشتی جو ہے وہ سمندر کی موجوں میں وہ غرق ہو گئی، تو صحابہ جو ہے وہ تیرتے تیرتے پھر ساحل تک پہنچے. اب ساحل پر جو پہنچے تو وہ اس زمانے کے کپڑے ایسے کپڑے تو نہیں تھے نا جیسے آج ہم پہنتے ہیں، جس کے اندر بیلٹس بھی ہوتے ہیں اور الاسٹک بھی ہوتی ہے اور زاربند بھی ہوتا ہے سب کچھ، رائٹ. تو ان کے کپڑے ایسے تھے کہ وہ اس اتنی مشقت اور اتنا تیرنے وغیرہ کے اندر وہ کپڑے چلے گئے پانی کے اندر. ٹھیک ہے، تو اب ان کے پاس لباس تھا ہی نہیں، اب انہوں نے اپنی نگاہوں کی تو حفاظت کری ہوگی اللہ کے خوف کی وجہ سے، لیکن نماز بھی تو اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کو پڑھنی تھی نا، نماز کا وقت آ گیا تھا تو انہوں نے پھر بغیر لباس کے نماز پڑھی تھی. ٹھیک ہے، لیکن وہ نماز جائز ان کے لیے کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ لباس نام کی کوئی چیز قریب قریب نہیں تھی اور نماز کا وقت ختم ہونے والا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس سچویشن میں تو مجبوری کے تحت وہ جائز ہوگی، لیکن اگر ایسی مجبوری نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی ستر ڈھانپے بغیر. حالانکہ اگر وہ اکیلا بھی ہے، کسی نے اس کو دیکھا بھی نہیں، پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح نماز اگر کسی ایسی جگہ پڑھی جہاں کوئی دوسرا آدمی دیکھنے والا نہیں ہے، اس وقت بھی اگر نماز میں ستر کھل گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بنیادی مسائل جب آپ نے نماز کے پڑھے ہوں گے تو اسی وقت سے آپ کو یہ بات پتا ہوگی انشاءاللہ کہ جی نماز اور اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ عورت جو یعنی مرد کا ستر جو ہے وہ تو ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اگر کھل جائے تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور عورت کا ستر جو ڈیفائنڈ ہے تو اس میں سے کوئی چیز کھل جائے، یا اگر اتنا باریک کپڑا ہو کہ وہ نظر آ رہا ہو اس کپڑے کے پیچھے سے تو بھی جو ہے وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے. جب بھی دوپٹہ باریک دوپٹہ سر پہ باندھ دینے سے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ بال نظر آ رہے ہوتے ہیں باہر سے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے بچوں نے سبحان اللہ کلی بات ہی ہوئی، بچے پوچھ رہے تھے کہ بھائی جو ہے وہ یعنی جو مردوں کا لباس ہوتا ہے وہ بھی کبھی باریک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے شلوار کا خالی کپڑا ہے تو وہ باریک ہوتا ہے، تو پھر نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ تو پھر ہم نے جواب دیا کہ اسی وجہ سے جو کرتا پہنتے ہیں تو کرتا پہننے سے جو شلوار کی کپڑے کی اگر باریکی بھی ہو تو وہ کور ہو جاتی ہے، یعنی ڈبل کپڑا ہو جاتا ہے نا، تو اب وہ باریکی کا مسئلہ نہیں رہتا. تو اس وجہ سے مرد کی نماز جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے جب وہ اوپر سے کرتا بھی ڈال لیتا ہے. ٹھیک ہے، خارج نماز لوگوں کے سامنے ستر پوشی کے فرض ہونے میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں، لیکن خلوت میں جہاں کوئی دوسرا دیکھنے والا موجود نہ ہو وہاں بھی صحیح قول یہی ہے کہ خارج نماز بھی بلا ضرورت شرعیہ یا طبعیہ کے ستر کھول کر ننگا جائز بیٹھنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو نماز کے باہر بھی بلا ضرورت، ٹھیک ہے، یعنی بلا یعنی ضرورت کے ساتھ جو ہے وہ تو اجازت ہے ستر کے کھولنے کی. ٹھیک ہے، جیسے یعنی اپنے گھر کے اندر جو محرم مرد ہوتے ہیں تو محرم مرد کے سامنے اب یہ ستر کی جو ڈیفینیشن ہے یہ ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہے نا، ان فرنٹ آف ڈیفرنٹ پیپل اٹس ڈیفرنٹ. ٹھیک ہے، تو محرم مردوں کے سامنے یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ ساری تفصیل ہم سورہ نور کے اندر پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو محرم مرد کے سامنے ڈیفرنٹ ہے، شوہر کے سامنے کوئی ستر نہیں ہے تو وہ ڈیفرنٹ ڈیفینیشن ہو گئی ستر کی شوہر کے سامنے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو غیر محرم مرد ہے اس کے سامنے ستر کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ڈاکٹر کے سامنے، رائٹ، ڈاکٹر غیر محرم مرد ہے جیسے بات ہو چکی ہے، رائٹ، لیکن اس کے سامنے ستر کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہے. کیا ہے؟ سارا بدن ستر ہے سوائے اس موقع کے اس جگہ کے کہ جہاں پر ڈاکٹر کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، مرہم لگانے کی، دوا لگانے کی، انجیکشن لگانے کی یا اس طرح کی، تو صرف وہ مقام ڈاکٹر کے سامنے ستر نہیں ہے، لیکن باقی پورا کو پورا بدن ڈاکٹر کے سامنے ستر ہے. تو یہ ستر کی تعریف پر ڈپینڈ کرتی ہے کس کے سامنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، तो ये खारिज नमाज वाली बात हो गई। ओके, तो यानी ये एक वन कांस्टेंट नहीं है। नमाज का सतर अलग चीज है, महरम के सामने सतर अलग चीज है, डॉक्टर के सामने सतर अलग चीज है, और शौहर का मामला अलग है। ठीक है, तो ये हुक्म तो सतरे औरत का था, जो अव्वले इस्लाम से बल्कि अव्वले आफरीनश से। आफरीनश का डिक्शनरी मीनिंग तो एक्चुअली मुझे नहीं पता, लेकिन आफरीनश का लफ्ज निकला कहाँ से, कुछ पुरानी मुझे याद, यानी फ्रॉम द वेरी क्रिएशन, टाइम ऑफ द क्रिएशन, बिल्कुल इब्तिदा आफरीनश का लफ्ज वहीं कहीं से उसका ताल्लुक है। तो अव्वले आफरीनश से तमाम शराए अंबिया में फर्ज रहा है, जिसमें मर्द औरत दोनों बराबर है। ठीक है ना, यानी मर्द का सतर है डिफरेंट, ये नहीं कि दोनों का सतर सेम है, लेकिन उसका जो सतर है वो उसको ढांपना फर्ज है, इसका जो सतर है वो इसको ढांपना फर्ज है। जलवत व खलवत में भी बराबर है, जैसे दोनों के सामने नंगा होना जायज नहीं है, ऐसे ही खलवत और तन्हाई में भी बिला जरूरत नंगा रहना जायज नहीं है। ठीक है, यानी जो घर के महरम मर्दों के सामने जो सतर होता है, तो उस सतर को जो है वो तन्हाई में भी ढांप करके रखना है, यानी कि तन्हाई के अंदर उसको खोल करके जो है वो घर के अंदर रह रहे हैं। दूसरा मसला हिजाब और पर्दे का है। अच्छा, एक मिनट। अब ये जायज जायज की जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं इतने सारे, ठीक है, तो अब जाहिर है आज के दौर के अंदर तो जो हम मुसलमान लोग हैं, माशाल्लाह नई रोशनी स्कूलों के पढ़े हुए मुसलमान, तो अगर हमने कोई काम नहीं करना होता है, ठीक है, हमारे मिजाज के खिलाफ होता है, नहीं करना होता है, तो फिर हम ये कहते हैं ना कि ये जायज किधर से आ गया, ये लफ्ज जायज कहाँ से आया, किसने डिफाइन किया जायज। ठीक है, तो बस वहां पर ये आता है कि जी जायज की जो डेफिनेशन है या जो लफ्ज जायज इख्तियार किया गया है, ये किसने इख्तियार किया है, ये उलमाए उम्मत ने इख्तियार किया। ठीक है, हर चीज के ऊपर आपको हदीस ना भी मिले, या अगर हदीस मिले भी तो उस हदीस की भी एक्सप्लेनेशन से फिर बात समझ में आएगी कि जी अच्छा इस हदीस से जवाज निकल रहा है इस हुक्म का। ठीक है, लेकिन इतना सुनने का किसी के पास ना तो टाइम होता है, जो करना चाहता है उसके खिलाफ काम, तो वो तो इस डिस्कशन में पड़ता ही नहीं है ना। ठीक है, तो इसी वजह से ये सारी डिफरेंट डिस्कशन जो है जायज की और नाजायज की, ये इसकी शर्त एतमाद है, उलमा पर एतमाद इसकी शर्त है। अगर ये शर्त मफकूद हो गई तो फिर इन बातों की कोई हैसियत नहीं रह जाती। ठीक है, तो ये उलमा के ऊपर एतमाद जो है ये बुनियाद है। ठीक है, ये अगर बुनियाद रहेगी तो फिर बात आगे चलेगी, और अगर ये बुनियाद नहीं रहेगी ना, तो फिर एतराज करने वाले को फिर आप मतलब कोई फायदा नहीं है उसके साथ। बाकी ये कि जिनको इल्म नहीं है लेकिन वो इल्म हासिल करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनको जब आप बताएंगे कि ये जायज है ये नाजायज है, तो वो आपकी बात को मान लेंगे, क्योंकि वो आपसे सीखना चाहते हैं, और वो सीखना यानी आपके पास आए ही इसलिए हैं क्योंकि उनको आपके ऊपर कुछ एतमाद है। ठीक है ना, जब तो वो आपके पास आए पूछने के लिए, तो जब आप उनको जो जवाब देंगे कि ये जायज है ये नाजायज है, तो वो आपकी बात को सुन भी लेंगे। दूसरा मसला हिजाब और पर्दे का मसला है कि औरतें अजनबी मर्दों से पर्दा करें। इस मसले में भी इतनी बात तो अंबिया व सुलहा और शुरफा में हमेशा से रही है कि अजनबी मर्दों के साथ औरतों का बेमहाबा इख्तलात ना हो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दो लड़कियों का किस्सा जो कुरान मजीद में 12 पारे में पारा 20 में आया है, इसमें लड़कियां अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए बस्ती के कुएं पर गईं, जहां लोगों का हुजूम था, वो अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। तो कुरान करीम में है कि ये लड़कियां एक तरफ अलग खड़ी हो गईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनका इस वक्त इत्तेफाकी तौर पर मुसाफिराना अंदाज में वहां गुजर हुआ, तो उन लड़कियों को अलाहिदा खड़े देख कर सबक पूछा, तो लड़कियों ने दो बातें बतलाई। ठीक है, अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम नौजवान थे, गैर शादीशुदा थे। ठीक है, इन्होंने इन लड़कियों से बात ही क्यों करी, नजर बचा के निकल जाते। ठीक है ना, तो इसके दो जवाब, एक जवाब ये कि पर्दे के अहकाम तो उस वक्त आई भी नहीं थे, ठीक है ना, तो पर्दे वाला मामला तो था भी नहीं। दूसरा ये कि कि आवाज का पर्दा तो आज भी नहीं है, ठीक है ना, ये खातून से बात तो आप कर सकते हैं जरूरत के तहत, ठीक है ना। अब इस मामले के अंदर जरूरत क्या थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको मुश्किल हालत में देखा, ठीक है, ये देखा कि जी दूसरे लोग जो हैं वो तो पानी भर रहे हैं और उनकी बकरियां शराब हो रही हैं, और जाहिर है इनकी भी बकरियां हैं, इनको भी पानी पिलाने की जरूरत है, लेकिन ये कर नहीं पा रही हैं, ठीक है ना। तो इस वक्त जो है वो एक जिसको खिदमत खल्क का जज्बा कहते हैं, ठीक है, जब इंसान के अंदर कोई बदनीयती ना हो तो वो नेक नियति के साथ खिदमत खल्क का काम कर सकता है, जिसके अंदर के इवन किसी गैर महरम से भी बात करनी पड़ जाए, लेकिन बदनीयती के साथ तो इजाजत नहीं होगी, क्योंकि वहां पर फिर फसाद वाला मसला आ जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तो बदनीयती वाला, फसाद वाला, शहवत वाला मसला नहीं था ना, क्योंकि अल्लाह के नबी थे। तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को सेफ कंसिडर करके इस मामले के अंदर इंटरव्यू से बात करी कि भाई आप क्यों इस परेशानी की हालत में खड़ी हुई है, पर्दे के अहकाम भी नहीं थे और परेशानी भी थी, खिदमत खल का जज्बा भी था, और साथ साथ जो है वो अपना नफ्स भी जो है वो अच्छी खासी हद तक काबू में था, ठीक है, अगरचे के इस वक्त तक नबूवत मिली नहीं थी, ठीक है ना। नबुवत का तो वो बाद में, जब 10 साल गुजारने के बाद इन दो लड़कियों में से किसी एक के साथ शादी करके फिर वापस जा रहे थे मिस्र, तब नबुवत मिली थी ना, अभी को थोड़ी नबुवत मिली थी। तो इसके साथ जो है उन्होंने इनसे बात करी तो इन लड़कियों ने फिर जवाब भी दिया। अव्वल ये कि इस वक्त यहाँ मर्दों का हुजूम है, हम अपने जानवरों को पानी इस वक्त पिलाएंगे जब ये लोग फारिग होकर चले जाएंगे। दूसरी बात ये भी बतलाई कि हमारे वालिद बूढ़े जयीफ हैं, जिसमें इशारा इस तरफ है, भाई ये क्यों बात बतलाई हमारे वालिद बूढ़े जयीफ हैं, जिसमें इशारा इस तरफ है कि जानवरों को पानी पिलाने के लिए निकलना ये उर्फ और आदत के एतबार से औरतों का काम नहीं था, ठीक है ना। यानी इवन उस जमाने में भी ये यानी एक अनयूजुअल बात थी कि भाई औरतें क्यों पानी पिलाने के लिए आई हुई है बकरियों को, ठीक है, और मर्दों के हुजूम के अंदर जो है वो औरतें क्यों काम करने के लिए आई हैं, मर्द क्यों नहीं आए। दैट्स वाई उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी, दे फेल्ट इट नेसेसरी टू गिव द एक्सप्लेनेशन कि भाई हमारे वालिद साहब बूढ़े हैं, ठीक है, और बूढ़े ऐसे बूढ़े होंगे, जाहिर है इतने ज्यादा यानी जयीफ होंगे कि वो इस तरह का मुशक्कत वाला काम नहीं कर सकते होंगे, ठीक है। तो इसमें इस तरफ इशारा है कि जानवरों को पानी पिलाने के लिए निकलना ये उर्फ और आदत के एतबार से औरतों का काम नहीं था, मगर वालिद के ज़ौफ और मजबूरी और किसी दूसरे आदमी के मौजूद ना होने के सबब ये काम हमें करना पड़ गया, ठीक है। अब ये इंटरप्रिटेशन इस वाकये की कौन कर रहा है, हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी वाकये की एक और इंटरप्रिटेशन भी इस फकीर ने सुनी, ठीक है ना, वो किसने करी, वो एक अमेरिका के अंदर रियाज बॉर्न स्कॉलर साहब है, पाकिस्तानी निजात लेकिन बॉर्न एंड रेज इन रियाद, फिर वो चले गए अमेरिका, ठीक है, अब अमेरिका में रहते हैं और बहुत मकबूल है इस वक्त दुनिया में, हत्ता कि उनका कोई बयान होता है तो उसमें हजारों लोग आते हैं, चाहे वो मलेशिया में हो चाहे टर्की में हो, हत्ता कि टिकटें लगती हैं। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान भी आए हुए थे, ठीक है, और पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर बड़े यानी इस्लामिक स्कूल वालों ने जो है वो उनको इनवाइट किया हुआ था अपने फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो उनकी एक इंटरप्रिटेशन भी है इस वाले वाक्य की, उस इंटरप्रिटेशन को आप सुने तो फिर आप सोचेंगे कि भाई कौन सही है, ये सही है कि फिर मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह सही है, क्योंकि उनकी इंटरप्रिटेशन जो है या उनका जो अंदाज है इस वाक्य को बयान करने का ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो भाई अब हमारे ऊपर है या हमारे चॉइस है कि हम मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह की इंटरप्रिटेशन को लेते हैं या उन खान साहब के एक्सप्लेनेशन को लेते हैं, ठीक है। हमने मेरे सामने वो आई कैसे, मुझे किसी ने उनकी वीडियो भेजी, ठीक है ना, और ये पूछने के लिए भेजी कि ये जो साहब बयान कर रहे हैं इस इन तमाम मामलात को, मर्दों औरतों के इख्तलात के मामलात को जिस अंदाज में बयान कर रहे हैं, तो हमारी बेटियां इसको सुन करके ये कह रही हैं कि भाई हमें क्यों पर्दा करने के लिए इतना कहा जाता है, हमें क्यों जो है वो नकाब ओढ़ने के लिए कहा जाता है, हमें क्यों जो है वो मर्दों से दूर रहने के लिए कहा जाता है, जबकि ये खान साहब जो है वो तो ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं और ये तो बहुत पॉपुलर स्कॉलर है, बहुत ही मकबूल स्कॉलर है, ठीक है ना। तो ये वीडियो मेरे पास इस कॉन्टेक्स्ट में आई थी, ठीक है। तो अब क्या किया जाए इसका, बहरहाल उनको समझाया कि भाई ऐसे ऐसे तो मामला नहीं है। बेशक आप अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका के हालात जो है वो हमें पता है, वो बात एक अंदाज में वो बात गलत नहीं कह रहे हैं एक्चुअली, ठीक है ना। वो बात क्या कह रहे हैं असल में, वो खान साहब जो है वो ये कहना चाह रहे थे कि जी जो हमारे पेरेंट्स पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी बैकग्राउंड से जो आए होते हैं अमेरिका में सेटल्ड होते हैं, ठीक है, तो अब वो अपनी बच्चियों को ना वो बहुत सारी पाबंदियां लगाते हैं, ठीक है ना, कि तुम इससे बात ना करो, तुम इससे ये ना करो, तुम अगर वो अगर बच्ची के पास कोई कोई बच्चा उनके कॉलेज का यूनिवर्सिटी का अप्रोच करे कि जी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो उस प्रपोजल के ऊपर जो है वो बच्ची को जो है ना फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि तुमको मैंने इसलिए यूनिवर्सिटी भेजा था, तुमको मैंने इसलिए कॉलेज भेजा था, ठीक है, और फिर जो है ना वो उसको उस प्रपोजल को तो मना कर देते हैं और फिर बांग्लादेश से किसी लड़के को लाकर उससे उसकी शादी कर देते हैं, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप अमेरिका आए हैं तो आप अपनी मर्जी से आए हैं ना, ये बच्ची तो अपनी मर्जी से नहीं आई ना इस अमेरिका, राइट, अमेरिका तो आप अपनी मर्जी से आए थे, तो आप बच्ची को लेकर के आए हैं और आपने फिर अपनी बच्ची को जो है वो यूनिवर्सिटी भेजा है, कॉलेज भेजा है, उस माहौल में भेजा है जहां पर के लड़के भी होते हैं और अमेरिका के अंदर जो होते होंगे आपको अंदाजा है क्या होते होंगे वहां पर, क्या माहौल होता है उधर, ठीक है ना, तो उस माहौल में आप अपनी बेटी को खुद भेज रहे हैं और उसके बाद आप उससे ये तवक्को रखते हैं कि वो किसी लड़के से बात ना करे, वो किसी लड़के को देखे नहीं, वो किसी लड़के के प्रपोजल को जो है वो यानी एक्सेप्ट ना करे, उसकी तरफ उसका दिल का मिलान ही ना हो, तो ये आप गलत कर रहे हैं। यहां तक तो वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इसलिए कि कसूर सारा का सारा माँ बाप का होता है, ठीक है ना, वो खुद ही अमरीका मूव होते हैं और खुद ही फिर अपने बच्चों को अमरीका की यूनिवर्सिटीज में भी भेजते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद तवक्को करते हैं। वही बात है कि जी आप जो मौलाना सज्जाद नुमानी का तुमने अपने एक बयान में करी कि आप अपने बच्चों के हाथ बांध करके उनको समंदर में धक्का दे दें और उसके बाद उनसे कहें कि वो गीले भी ना हो, वो गीले भी ना हो, तो भी कैसे, ये कैसे हो सकता है, ठीक है ना। वही जो हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने शुरू में लिखा था, जो अभी बयान में भी साहब ने रिपीट किया, राइट, कि भाई आप चूल्हा जलाएं उसके ऊपर पानी की पतीली रखें और फिर आप कहेंगे जी पानी को गर्म नहीं होना चाहिए, तो ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता ना। ये तो कसूर तो सारा का सारा वालदैन का होता है, तो यहां तक तो वो खान साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात की दलील के तौर पर जो उन्होंने फिर माशाल्लाह दलीलें लेकर के आए ना सहाबा कराम के बारे में और कुरान के अंदर ही जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों के का वाकया है, तो अब वो उधर जो है वो हदूद क्रॉस कर गया, उधर जो है उन्होंने जो है वो सहाबा कराम के बारे में ऐसी बातें करनी शुरू कर दी और शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी के बारे में ऐसी बातें करनी शुरू कर दी जिनके हया के ऊपर कुरान गवाही देता है कि जी वो चल भी रही थी तो हया के साथ चल रही थी, ठीक है। तो इसी तरह होता है कि बस जब हम सेल्फ थॉट किस्म की चीजें यानी सेल्फ थॉट हो करके फिर हम आगे से इस्लाह का काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, तो फिर उसमें यही होता है कि फिर हम लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। अगर सही बात कर भी रहे होते हैं ना तो करते करते, क्योंकि हमसे कोई पूछने वाला नहीं होता, हमें किसी का डर नहीं होता कि जी किसी के सामने हमें जवाबदेह भी होना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर वैसे हम खुद भी गलतियों से पाक नहीं है, बहुत गलतियां ये आजिज भी करता है, ठीक है ना, यकीनन करता है और आप लोगों को अंदाजा भी होता होगा कि पता नहीं कैसी कैसी गलतियां करते हैं, लेकिन एक बात कम से कम है कि गलतियां हो तो जाती होंगी लेकिन एक खौफ लगा रहता है हजरत जी का खौफ, ठीक है ना, अल्लाह ताला का खौफ तो भाई हर मुसलमान को होता है ना, हमें जो है वो अल्लाह ताला के साथ साथ हजरत जी का भी खौफ होता है, ठीक है ना, कि अगर कोई गलती ऐसी गलत बात कह गए ना तो आगे से हजरत जी से जो डांट पड़नी है ना तो वो उसका क्या करूंगा भाई, राइट, हजरत जी ने तो नहीं छोड़ना है, उन्होंने तो अच्छी तरीके से फिर क्लास लेनी है, ठीक है, तो जवाबदेह होता है ना इंसान, तो वो गलती करते करते भी बच जाता है, ठीक है ना, और अल्लाह ताला को वैसे भी ये सिस्टम चूंकि पसंद है तो अल्लाह ताला वैसे भी हिफाजत फरमाते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका कोई शेख ना हो, जिसको किस शेख के सामने जवाब ना देना हो और शेख भी ऐसा जो कि यानी बिल्कुल अकाबरीन के तरीके के मुताबिक चलने वाला शेख हो, ठीक है ना, वरना तो शेख तो हर बंदे का कोई ना कोई होता ही है ना, कोई ना कोई हर बंदा किसी ना किसी से तो मुतासर होता है, ठीक है, लेकिन वो शेख ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि जैसे हमारे हजरत हैं वैसा कोई शेख हो, ठीक है। तो फिर ना इंसान इस किस्म के ना फिर वो लिबर्टीज नहीं लेता, इस किस्म की आजादियां नहीं लेता कि जो जी चाहे बोलना शुरू कर दो, सहाबा के कराम के बारे में बोलना शुरू कर दो, अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे में बोलना शुरू कर दो, है तो अपनी अपनी जो है वो इस तरह के काम शुरू कर दो। तो खैर तो यही मामला हुआ फिर कि भाई उन्होंने जो है वो इस सारी चीजें बोल दी। अब वो बोल रहे थे अमेरिका के मुआशरे के बारे में, लेकिन इसको इस्तेमाल किसने शुरू कर दिया, पाकिस्तान के अंदर रहने वाली लड़कियों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि जी वो खान साहब जो है वो तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, सहाबा तो ऐसे रहते थे और अम्बिया की बेटियां जो है वो ऐसी रहती थी, तो आपने हमारे लिए क्या मुसीबत बनाई हुई, अपने पेरेंट्स को बोल रही है। और बिलाखिर यही हुआ कि फिर वो चूंकि बच्ची के दिल में मैलान तो पैदा हो चुका था ना इन सारी चीजों का, ठीक है ना, तो बिलाखिर बच्ची जिसको के वालदैन साहब ने पर्दे के साथ यानी उठा उसको उसको उठाया था उस बच्ची को पर्दे के साथ, राइट, बिल आखिर वो पर्दा उस बच्ची का गया, खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे लोगों के बारे में हमें क्या गुमान रखना चाहिए, उनको एक्सप्लिसिटली गलत क्यों नहीं कहते उलमाए कराम, उनको एक्सप्लिसिटली गलत क्यों नहीं कहते? भाई पहली बात तो ये है कि कहते तो हैं, ठीक है, लेकिन हर एक का एक अलग स्टाइल होता है बात करने का, ठीक है। तो अगर उनके पास उलमा के पास फतवे आए उतने वो आए होते हैं ना कि जी आप इनके बारे में बताएं कि जी ये गलत है कि ये सही है, तो फिर जितना उलमा के पास इल्म होता है वो उस इल्म के हिसाब से फिर फतवा देते हैं, ठीक है। तो अब मेरे सामने एक्चुअली ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है कि जी फलाने आलम के पास सवाल आया और उन्होंने जवाब दिया, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह नहीं सकता कि उलमाए कराम उनको एक्सप्लिसिटली गलत कहते भी हैं कि नहीं कहते हैं, ठीक है। लेकिन इट डजंट मीन कि अगर आपके सामने कोई फतवा नहीं आया तो वो गलत ना भी कहते हो, ठीक है। तो बहरहाल इसमें अच्छा एक और बात मैं ये भी याद रखिएगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि उन्होंने अमेरिका के मुआशरे के बारे में तो सही बात करी थी ना, तो उलमा जो उनके बारे में अगर नरम रवैया रखते भी है ना, तो वो ये सोच करके भी रखते हैं कि भाई वो अमेरिका के हिसाब से तो यही जरूरत है, ठीक है ना। अब अमेरिका में आप वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर सकते जो कि आप पाकिस्तान, इंडिया और सऊदी अरब के अंदर मेंटेन कर सकते, ठीक है ना। तो एक तो ये बात, दूसरा ये कि अगर वो कुछ बेसिक मामलात को अगर अकायद के एतबार से अगर गलती करें ना, उलमा फिर उनके खिलाफ फतवा देंगे, ठीक है ना, या कोई और इस किस्म की हो सकता है। ये मैं जिस वीडियो क्लिप की बात कर रहा हूँ वो ऐसे किसी आलम के सामने से गुजरी ना हो, मेरे पास तो इत्तेफाक से अलकुदरत ने वो पहुंच गई ना, क्योंकि किसी मेरे रिश्तेदार ने ये सवाल किया था, ठीक है। लेकिन मौलाना तारिक जमील, खैर मौलाना तारिक जमील का तो ये काम है भी नहीं ना, उनका काम तो ये है कि जी सबको जोड़ करके चलना, सबको ले, वो तो शियाओं को भी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से उनके बारे में भी बातें कह देते हैं, राइट। वो तो यानी उनका तो बिल्कुल ही डिफरेंट एक काम करता है ना मौलाना तारिक जमील साहब का, वो कोई मुफ्ती को थोड़ी है दारुल इफ्ता के जी फतवे देते थे कि फलाना कौन क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है, राइट। तो मौलाना तारिक जमील इस मामले में ना स्टैंडर्ड नहीं है कि भाई बंदा गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो तो हर एक कोई साथ लेकर के चलने का उनका उनका एक, एक, एक काम करने का अंदाज है, उनका उनकी अलग प्रायोरिटी है, ठीक है। तो हमें इनके बारे में क्या गुमान रखना चाहिए, मौलाना मौदूदी के बारे में भी यही पूछना। हाँ मौलाना मौदूदी का भी यही मामला है ना कि वो उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें करी, बहुत नेक नियति से करी, लेकिन भाई है कि जी वो लिमिट जब क्रॉस हो गई, तो लिमिट क्रॉस होने को बजाहिर हमें तो ये लगता है कि जी कोई किसी के सामने वो जवाबदेह नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी लिमिट्स क्रॉस कर दी, और फिर जब क्रॉस कर दी तो फिर उसके बाद हमारे उलमा ने उनके खिलाफ लिखा, ठीक है, फतवे भी दिए, किताबें भी लिखी और बातें भी करी फिर उनके बारे में कि भी ऐसी बातें गलत हैं, ये आपने जो कह दिया कैसे कह दिया। लेकिन अब जमाना भी ऐसा हो चुका है ना कि जी यानी वो तो फिर भी 70-80 साल पहले की बात थी, अब तो बहुत ज्यादा मामला खराब हो चुके हैं, और अब गांधी की हद तक तो उलमा ने बहुत कुछ लिखा है ना, लेकिन अब ये खान साहब जो है उनके बारे में मुझे नहीं मालूम, हो सकता है लिखा हो सकता है ना लिखा, आई रियली डोंट नो। बहरहाल तो कह रहे हैं कि ये हाल कुरान में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की लड़कियों का बताया गया है, जिससे मालूम हुआ कि इस जमाने और उनकी शरीयत में भी औरतों मर्दों का दोष बदोश चलना और बेमहाबा इख्तलात पसंद नहीं था, और ऐसे काम जिनमें मर्दों के साथ इख्तलात हो वो औरतों के सुपुर्द ही नहीं किए जाते थे। बहरहाल इस मजमूए से ये मालूम होता है कि औरतों को बाकायदा पर्दे में रहने का हुक्म उस वक्त नहीं था, इसी तरह इब्तदाई इस्लाम में भी यही सूरत जारी रही, ठीक है। 3 हिजरी या 5 हिजरी में औरतों पर अजनबी मर्दों से पर्दा करना फर्ज कर दिया गया, इसकी तफसीलात आगे आती है, ठीक है। बहरहाल इनके बारे में जो गुमान वाला मामला है, तो हमें यही करना चाहिए कि खुद तो यानी अपने उलमा से ही हमें पूछना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे हालात से और हमारे यानी मामलात से वाकिफ हो, ठीक है। तो अपने इंटरप्रेट यानी हमें क्या करना है, हमें ये ये किसी के बयानात सुन करके इसका फैसला नहीं करना ना, ताकि हम तो यानी मशायख तो यहाँ तक मशवरा देते हैं कि भाई इवन अपने मुल्क के दूसरे उलमा के बयानात सुन करके तुम अपनी जिंदगी के फैसले ना करो, ठीक है ना। चाहे जाए कि आप अमेरिका में किसी का बयान है उसको सुन करके जो है वो अपनी जिंदगी का लाए अमल मुतय्यन कर रहे हैं कि जी मुझे पाकिस्तान में ऐसे रहना चाहिए। भाई वो अमेरिका के बारे में बात कर रहा है, वो जो है वो यूरोप के बारे में बात कर रहा है, यूरोप के माहौल मुआशरे की, उसकी ऑडियंस डिफरेंस है, डिफरेंट है, आप एक डिफरेंट ऑडियंस है। तो आप तो पाकिस्तान के उलमा के मुताबिक आपको चलना चाहिए, या इंडिया में है तो इंडिया के उलमा के मुताबिक आपको चलना चाहिए, ठीक है। तो गुमान उनके बारे में ये रखें कि बस अगर उलमा उनको डील करेंगे तो वो उलमा का मसला, ये मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला ये है कि जी मैंने अपने उलमा से पूछ करके कहा कि जिंदगी गुजारनी है, उनका मामला अलग है, हवाला है। ये हाल कुरान में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, अच्छा ये हो गया। इससे ये मालूम हुआ, अच्छा तो इससे ये मालूम हो गया कि सतर औरत और हिजाब निसा ये दो मसले अलग अलग हैं। सतर औरत हमेशा से फर्ज है, हिजाब निसा 5 हिजरी में फर्ज हुआ। सतर औरत मर्द औरत दोनों पर फर्ज है और हिजाब सिर्फ औरतों पर फर्ज है। यानी पर्दे में रहना, अपने आप को छुपाना, ये मर्दों के ऊपर फर्ज नहीं है, ठीक है, ये औरतों के ऊपर फर्ज है। सतर औरत लोगों के सामने और खलवत दोनों में फर्ज है, हिजाब सिर्फ अजनबी की मौजूदगी में फर्ज है, ठीक है। कितने मेजर डिफरेंसेस हो गए ना, सतर औरत हर हाल में फर्ज है, जितना सतर जिस हाल के लिए डिफाइन किया है शरीयत ने उतना छुपाना तन्हाई में भी फर्ज है, लेकिन हिजाब जो है वो सिर्फ दूसरों की, यानी हिजाब का ताल्लुक दूसरों के साथ है, ठीक है, उनकी मौजूदगी में है और उनकी बगैर मौजूदगी में नहीं है। ये तफसीर इसलिए लिखी गई कि इन दोनों मसलों को खलत मलत कर देने से बहुत से शुबहात, मसाइल और अहकाम कुरान के समझने में, और अहकाम बहुत से शुबहात, मसाइल और अहकाम कुरान के समझने में पैदा हो जाते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारे शुबहात को एक जन्म ले देते हैं अगर ये बात क्लियर ना हो कि सतर क्या चीज है और हिजाब क्या चीज है, इन दोनों में क्या फर्क है। अच्छा, इसीलिए नमाज में चेहरा और हथेलियां खुली हो तो नमाज बिल इत्तेफाक व बा इजमा जायज है। चेहरा और हथेलियां तो अजरूए नस मुस्तस्ना है, ठीक है ना, यानी कुरान और हदीस, यानी हदीस से साबित है ये कि चेहरे और हथेलियां मुस्तस्ना है सतर से। कदमैन को फुकहा ने इन पर कयास करके मुस्तस्ना करार दिया है, यानी दोनों कदमों को, ठीक है, यानी नमाज में दोनों कदम भी खुले हुए हों तो नमाज हो जाती है। लेकिन अजनबी मर्दों से पर्दे में भी चेहरा और हथेलियां मुस्तस्ना हैं या नहीं, इसमें इख्तलाफ है, ठीक है, जिसकी तफसील सूरह नूर की आयत ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा वहरा मिन्हा के तहत गुजर चुकी है, जिसका खुलासा आगे आता है, ठीक है। ये खुलासा बयान करना है, हिजाब शरई के दराजात और उनके अहकाम की तफसील। पर्दे निस्वा के मुतालिक कुरान मजीद की 7 आयात और हदीस की 70 रिवायात का हासिल ये मालूम होता है, ठीक है, यानी कंक्लूजन ये मालूम होता है। अब ये कंक्लूजन डिराइव किसने किया, ये मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने और इन जैसे दूसरे उलमा ने ड्राइव किया ये कंक्लूजन, ठीक है, यानी हासिल इन्होंने निकाला है। हासिल इनको ये मालूम होता है कि असल मतलूब शरई हिजाब अशखास है। अशखास क्या मतलब, पूरे की पूरी शख्सियत, ये नहीं कि लोगों का हिजाब, बल्कि पूरी शख्सियत का हिजाब मकसूद है, यानी औरतों का वजूद और उनकी नकलो हरकत मर्दों की नजरों से मस्तूर हो, यह है असल मकसूद। जो घरों की चार दीवारी या खेमों और या मुअल्लक पर्दों के जरिए हो सकता है, यानी लटके हुए जो पर्दे होते हैं उनके जरिए से ये काम हो सकता है। इसके सिवा जितनी सूरतें हिजाब की मनकूल हैं वो सब जरूरत की बिना पर और वक्त जरूरत और कदरे जरूरत के साथ मुकैद और मशरूत है, ठीक है, यानी असल डिफाइन कर दी। अब असल में से एक्सेप्शंस, ठीक है, ये एक्सेप्शंस जो हैं ये नीड की बेसिस पर है, ओके। तो इस तरह पर्दे का पहला दर्जा जो असल मतलूब शरई है वो हिजाब अशखास है, कि औरतें अपने घरों में रहें। لیکن شریعت اسلامیہ ایک جامع اور مکمل نظام ہے جس میں انسان کی تمام ضروریات کی رعایت پوری کی گئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عورتوں کو ایسی ضرورتیں پیش آنا ناگزیر ہے کہ وہ کسی وقت گھروں سے نکلیں۔ اس کے لیے پردے کا دوسرا درجہ قرآن و سنت کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سر سے پاؤں تک برقع یا لمبی چادر میں پورے بدن کو چھپا کر نکلیں۔ راستہ دیکھنے کے لیے چادر میں سے صرف ایک آنکھ کھولیں، یا برقع میں جو جالی آنکھوں کے سامنے استعمال کی جاتی ہے وہ لگا لیں۔ ضرورت کے مواقع میں پردے کا دوسرا درجہ بھی پہلے کی طرح سب علماء اور فقہا کے درمیان متفقن علیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو دوسرا درجہ ہے یہ پورے کے پورے اپنے وجود کو چادر میں چھپا کر کے نکلنے کا ہے۔ ٹھیک ہے، چادر کا مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ جی لباس پہنی ہوئی ہے تو لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے اس میں، لباس ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، لباس کیا چیز ہوتی ہے؟ جو کہ بدن کے قریب ہو۔ جب ہی تو شوہر اور بیوی کو جو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، چادر کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ ردا، ردا چادر کو کہتے ہیں نا، رائٹ؟ تو تم اس کی ردا ہو، یہ تمہاری ردا ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، لیکن ردا جو ہوتی ہے، جو چادر ہوتی ہے، یہ بدن سے چپکی ہوئی نہیں ہوتی ہے، لباس چپکا ہوا ہوتا ہے۔ تو چادر پھر کیا چیز ہوئی؟ جو چپکی ہوئی نہ ہو، یعنی ڈھیلی ڈھالی ہو۔ ٹھیک ہے نا، تو اسی وجہ سے جو برقع ہونا چاہیے نا، برقع ہو یا چادر ہو، یہ ڈھیلا ہونا چاہیے، یہ ٹائٹ برقعے والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، پھر تو وہ لباس ہی بن جائے گا جو کہ چپکا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جی اس کے اندر سے کتنا آپ کا کھلا ہو سکتا ہے؟ تو جو یہاں پر انہوں نے لکھا ہے وہ کیا ہے کہ جی جس میں سے کہ صرف دیکھنے کے لیے جو چیز ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ماشاءاللہ ایک آنکھ، ٹھیک ہے، ون ڈائمینشنل ویو، تو حضرت کے مطابق تو ایک آنکھ کھلی رکھیں، یا یہ کہ جالی ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر ظاہر ہے آئیڈیل سچویشن تو وہی ہوگی کہ جی آنکھ بھی، یعنی جیسا کہ سعودی عرب کے اندر اکثر عورتوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اوپر ایسا ڈال کے رکھتی ہیں کہ لائٹ سا کپڑا ہوتا ہے اور اس سے نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اکثر جو آج کے دور کے ہمارے بڑے ہی پریکٹسنگ، حتیٰ کہ مشائخ، ٹھیک ہے نا، اس دور اس لیول کے جو علماء ہیں اور مشائخ ہیں، چاہے وہ مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ خاتم جیسے لیول کے ہوں، چاہے وہ حضرت جی کے جیسے لیول کے ہوں، ٹھیک ہے، یا دوسرے بھی بڑے بڑے، ان میں ہم نے یہی دیکھا کہ دونوں دو آنکھوں کے کھلے رکھنے والے برقعے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اب چونکہ یہ علماء اس لیول کے علماء ہیں کہ ان کی اتباع جو ہے وہ ہمارے لیے شرعی حجت ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی اتباع، تو اب ان کی عورتوں کے حساب سے پھر دو آنکھوں کا جو کھلا ہوا نقاب ہوتا ہے تو وہ پھر اکثر عورتیں جو ہے وہ یہی کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے اندر وہی ہے کہ جی جتنا اس کے اندر زیادہ کر سکیں اتنا زیادہ بہتر ہے، تو اگر وہ کر سکیں تو دونوں آنکھوں کو چھپا کے رکھیں، یا ایک اور ایک آنکھ کو چھپا کر کے رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ تو انسان کے اپنے اس کے اوپر ہے، لیکن کم از کم ایک منیمم لیول تو ہے نا اس کے اندر کہ جی دو آنکھوں کے کھلے ہونے کی جگہ جو ہے وہ ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھی ہے کرتے ہوئے، تو اس وجہ سے اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے دو آنکھوں والے کو۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مجھ سے کل کسی نے سوال کیا کہ جی ہمارے ایک رشتے دار کے گھر جو ہے وہ شادی ہے، تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، تو اس کے اندر پردہ بھی ہوگا اور مخلوط محفل بھی نہیں ہوگی، اور یعنی ویٹریسز بھی ہوں گی، عورتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں اس شادی میں یعنی اچھا اس میں کھانا بھی ہوگا، لیکن ویٹریسز جو ہے نا وہ عورتیں ہوں گی، مرد نہیں ہوں گے، اور بالکل موسیقی بھی نہیں ہوگی، بالکل الگ الگ ہوگا، تو کیا ہمیں جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو اب میں نے مجھے سمجھ بھی نہیں آئی کہ وہ پوچھنا کیا چاہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں جانا چاہیے، آپ کے رشتے دار ہیں، انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا تو کیوں نہیں جانا چاہیے؟ تو پھر انہوں نے ذرا کلیئر بات کری کہ ہم نے بہت سارے دیندار لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر لڑکی کی طرف سے انویٹیشن ہو جہاں پر کھانا ہو تو وہ نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے نا، لڑکی کی طرف سے انویٹیشن ہو جہاں پر کہ وہ لڑکی کی طرف سے کھانا ہو لڑکی والوں کی طرف سے تو وہ نہیں جاتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بس مسجد میں نکاح کر کے، یا وہ الگ سے نکاح کر کے، جو بھی ہو، گھر میں نکاح ہو یا مسجد میں ہو، تو وہ کر کے آپ رخصت کروا لیں، پھر ولیمہ ہو، ولیمے کے اندر آپ کھانا کریں، دعوت کریں، تو اس میں پھر ہم آئیں گے، آپ سب کو انوائٹ کریں۔ ٹھیک ہے نا، تو اصل تو یہی ہے، بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ پوچھ کیوں رہی تھیں؟ وہ پوچھ یہ رہی تھیں کہ جی اب ہمارے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ ہمیں نا پوچھ کے چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، तो मैंने उनको जवाब, पता है क्या दिया? मैंने उनको जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको बिल आखिर दीन समझ में आ गया, ठीक है ना, बिल आखिर आपको दीन समझ में आ गया, अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है आपको, मुबारक मुबारक, ठीक है ना। ये दीन क्या है? ये दीन जो है ये देखा देखी करने का नाम दीन नहीं है कि भाई आपने किसी दीनदार बंदे को देख लिया करते हुए तो आप वही करना शुरू हो जाए, बल्कि अवामुन नास का दीन ये है कि वो अपने उलमा से पूछ करके चले, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम इतने अरसे में आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो उलमा से पूछ लेना चाहिए, ठीक है। तो आपने जो पूछा है, तो अब मैं आपको उसका जवाब देता हूँ आपकी खातिर, आपके लिए जो जवाब है वो जवाब ये है कि भाई हमने अपने अकाबरीन को देखा है इस दौर के अंदर, जिसके अंदर यानी कई दफा देखा है कि लड़की वालों की तरफ से अगर खाना हो भी ना तो भी वो उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर यानी मौसीकी हो तो वो उसको वो जायज नहीं करते, ठीक है। मिक्सिंग इख्तलात उसको एक्सेप्ट नहीं करते, मौसीकी को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन लड़की वालों की तरफ से खाना जो है ना इसके ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है ना। तरगीबन जरूर कहते हैं कि नहीं होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है, सुन्नत के ज्यादा करीब है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से ऐसा नहीं करते कि नहीं हमने तो शादी में फिर आना ही नहीं, हमने तो आपकी तकरीब अटेंड करनी ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो फिर हालात वाकयात के हिसाब से कि जी कितनी करीबी रिश्तेदारी है और क्या यहाँ पर पर्दा मेंटेन हो रहा है, मौसीकी से इज्तनाब हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं और ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि जी हाँ करीबी रिश्तेदारी भी है और जाना जो है वो मसलहतन बेहतर है, ठीक है, यानी जाना बेहतर है ना जाने से, तो सिर्फ खाने होने की वजह से उस शादी को अवॉइड नहीं करते, शादी में जाने से इनकार नहीं करते, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर क्या चीज आ गई, इसमें इस दौर इस जमाने के जो उलमाए कराम है उनकी इत्तिबा आ गई, ठीक है ना, उनकी इत्तिबा आ गई, बजाय इसके कि आप जो है वो बस चंद दीनदार लोगों के अमल को देख करके फिर अपना भी अमल उसके मुताबिक बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो यही मामला जो है वो इसके पर्दे के यानी ये जो उन्होंने लिखा है कि जी हजरत ने जो लिखा है कि एक आंख का जो होना चाहिए ना, तो हजरत ने बेशक सही लिखा है, इसको हम गलत हरगिज नहीं कह सकते, यानी कि जी वो गलत, बिकॉज एक तो ये बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े शेख, बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े आलिम है, ठीक है। और उन्होंने जो लिखा है वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन हमारे ऊपर जिनकी इत्तबा ज्यादा लाजिम है ना, हम अवामुन नास, ठीक है, हमारे ऊपर जिनकी इत्तबा ज्यादा लाजिम है वो हमारे जमाने के उलमाए कराम मुफ्ती हजरात, ठीक है। अगर वो उलमाए कराम और मुफ्ती हजरात किसी चीज को करने के लिए कह रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर ये है कि हम उनकी इत्तबा करें, ठीक है ना, उनकी इत्तबा करें, क्योंकि अगर हम उनकी इत्तबा छोड़ करके किसी और की इत्तबा करने की कोशिश करेंगे ना तो हैंडल नहीं कर सकेंगे हम इस चीज को, ठीक है ना, हम उस चीज को हैंडल नहीं कर सकेंगे, वो हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस दौर के तकाजे या इस दौर की मुश्किलात के मुताबिक जो उलमाए कराम ने मौकफ इख्तियार किया है वो इस दौर के मुताबिक है, ठीक है ना, और हम इसी दौर के लोग हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो इस दौर की उलमा ही की इतबा है, बजाय इसके कि अच्छा उलमाए में से जाहिर है उलमाए हक की, उलमाए बातिल की इतबा की तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना, उलमाए हक की इतबा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी फिर यही मामला चलेगा कि जी अगर दो आंखों वाला मामला इस वक्त चल रहा है तो दो आंखों को ही, अगर कोई ठीक है कर रहा है उसके लिए आसानी है वो हैंडल कर सकता है तो फिर वो हम उसको बुरा नहीं कह सकते, हम उसको गलत नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे करने वाले को गलत भी नहीं कहेंगे, ठीक है, कि जी दो 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 आंखें खोल करके कर रहा है। दूसरे दर्जे में हाथ और पांव भी छुपाना आ गया, नहीं हाँ एक्चुअली इनके जो है हजरत का लिखा हुआ तो उसके अंदर हाथ और पांव भी आ गया, ठीक है, लेकिन इसमें भी वही मामला है जिस तरह दो और एक आंख वाला मसला है ना, इसके अंदर भी वही मामला है कि बहुत सारे उलमा काबरीन के घर वालों को देखा कि हाथ जो है वो नहीं छुपा ग्लव्स से, ठीक है, और पांव का भी यही मामला है, लेकिन बेहतर यही है। देखिए इसके अंदर बस यही है कि जी ये तौफीक वाली बात चलेगी और तकवा की इंतहा वाली बात चलेगी, ठीक है, कि देखें आइडियल सिचुएशन है ना वो तो आगे आ भी रही है, पीछे भी शायद हम पढ़ चुके हैं, तो क्या जो बेस्ट है दी बेस्ट, ठीक है, दी बेस्ट क्या है, वही कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने बल्कि आगे 2216 पेज के ऊपर आ रहा है, अली रज़ी अल्लाह अन्हु वाली जो रवायत है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा कराम से, अय्यु शैइन खैरुल इमरा, कि औरत के लिए क्या चीज़ सबसे बेहतर है। सहाबा कराम खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब मैं घर में गया फातिमा तआला से, मैंने ये सवाल किया, तो उन्होंने फरमाया ला यरैना रिजाला वला यरौनहुन्ना, यानी औरतों के लिए बेहतर यह है कि ना वो मर्दों को देखें और ना मर्द उनको देखें। ठीक है ना। हजरत जी से हम बयान में क्या सुनते हैं कि सबसे बेहतर औरत वो है कि ना जिसने कभी मर्द को देखा हो और ना मर्द ने कभी जिसको देखा, वो बेहतरीन औरत है। तो भाई यानी जो पिनेकल है, पिनेकल हाईएस्ट मकाम औरत के लिए, वो तो सेट कर दिया गया। ठीक है, लेकिन साहबियात के अभी वाकयात हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि साहबियात में से अक्सर का ये अमल नहीं था। ठीक है, कि वो कभी भी किसी मर्द को उन्होंने नहीं देखा या किसी मर्द ने उनको नहीं देखा, ये साहबियात का अमल नहीं था। ये किसका अमल था? ये सिर्फ साहबियात में से भी ये सिर्फ हजरत फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह तआला का अमल था। ठीक है ना, तो उनको जन्नत की औरतों की जो सरदार बनाया गया, वो ऐसे ही तो नहीं बनाया गया भाई कि जी बस हाँ मेरे नबी की बेटी है तो इस वजह जन्नत की सरदार है। उनका अमल भी उसके मुताबिक था, बेहतरीन अमल था उनका भाई। हत्ता कि आपको पता होगा जब उनका जनाजा हुआ तो उन्होंने क्या वसीयत करी थी जनाजे के बारे में, किसी को पता ना लगे कि मैं कितनी लंबी हूं, मैं कितनी छोटी हूं, मैं मोटी हूं कि मैं पतली हूं। तो फातिमा के जनाजे के वक्त जो है वो वाली चारपाई तैयार हुई जो कि आज तक चल रही है। ठीक है, जिसके ऊपर इस तरह से जो है वो एक एक एक, एक, एक बो बनाया जाता है और बो के ऊपर चादर डाली जाती है। ठीक है ना, तो ये उनकी वजह से ये चीज स्टार्ट हुई थी। ठीक है, लेकिन अब आप सहाबियात को नाउजुबिल्लाह गुनाहगार तो नहीं कह सकते ना कि जी सहाबियात जो है वो तो देखती थी मर्दों को, और मर्द भी जो है वो कभी कभार किसी वजह से तो सहाबियात की तरफ नजर कर लिया करते थे किसी वजह से, राइट। तो अब उनको गुनाहगार तो नहीं कह सकते ना। यहाँ पर भी यही मामला है कि भाई करें तो बेस्ट तो यही है कि हाथों को भी छुपा करके रखें, पैरों को भी छुपा करके रखें, लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है या जो भी उनके साथ प्रॉब्लम है या जो भी उनकी मजबूरी है या जो भी उनकी एक इनहिबिशंस हैं, तो अब उसको भी इग्नोर करना पड़ेगा। उनके लिए कोई ना कोई हुज्जत अपने, कोई ना कोई जो है एक्सप्लेनेशन दिल के अंदर बना लें कि भी यहाँ कोई वजह होगी, कोई ऐसा होगा, वैसा होगा, वगैरह वगैरह, जिस तरह से भी फिर अपने गुमान को, अपने गुमान की हिफाजत करें। ठीक है, बाकी तीसरा दर्जा, एक तीसरा दर्जा भी बाज़ रिवायात से मफहूम होता है यानी फहम में आता है, जिसमें सहाबा और ताबईन और फुकहाए उम्मत की राय मुख्तलिफ है। वो ये कि औरतें जब बजरूरत घरों से बाहर निकलें तो वो अपना चेहरा और हथेलियां भी लोगों के सामने खोल सकती हैं, बशर्ते कि सारा बदन मस्तूर हो। पर्दा शरी के इन तीनों दर्जों की तफसील फिर मजीद आ रही है। ठीक है, आगे आ रही है। ठीक है, यानी कि तीसरा दर्जा जो है वो ये है। अब आजकल जो बुरका उमूमी तौर पर राइज है ना, ये गोया क्या है, ये दूसरे और तीसरे दर्जों का की कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, दूसरे दर्जे के से जो है वो निकाब ले लिया और तीसरे दर्जे से हथेलियों और पैरों का खोलना ले लिया। ठीक है, तो एक तरह से ये जो है वो कॉम्प्रोमाइज है बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड दर्जा। ठीक है, अब तफसील ये है कि पहला दर्जा हिजाब अशखास बिल बुयूत, हिजाब अशखास बिल बुयूत यानी घरों से हिजाब। कुरान सुन्नत की रूह से असल मतलूब यही दर्जा है। ठीक है, सूरह अहज़ाब की ज़ेर बहस आयत व इज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फ़सअलूहुन्ना मिन वराए हिजाब, इसकी वाज़ह दलील और इससे ज्यादा वाज़ह सूरह अहज़ाब ही के शुरू की आयत वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना है। इन आयतों पर जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल फरमाया, इससे और ज्यादा इसकी तशरीह सामने आ जाती है। ये ऊपर मालूम हो चुका है कि पर्दा निस्वा के मुतालिक पहली आयत हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह के वक्त नाजिल हुई। रवायात हदीस में हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मैं इस वाक़े हिजाब को सबसे ज्यादा इसलिए जानता हूँ कि मैं इस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था जब पर्दे के लिए यह आयत नाजिल हुई। तो आप ने मर्दों के सामने एक चादर वगैरह का, या चादर यानी चादर जैसी किसी चीज का या चादर का पर्दा डालकर हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को अंदर मस्तूर कर दिया। ठीक है, यानी छुपा दिया जनाब को पूरा का पूरा। ये नहीं किया कि उनको बुरके या चादर में मस्तूर कर देते, यानी उनके ऊपर एक चादर डाल देते, ऐसा नहीं। ठीक है, कितनी क्लियर बात करें। शान नुजूल में جو واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اوپر گزر چکا ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصود یہ تھا کہ امہات المؤمنین مردوں کی نظروں سے الگ رہیں، اندر رہیں، جیسا کہ ان کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے یدخلو علیک البر والفاجر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیں، کیونکہ ان کے اوپر نیک اور برے دونوں قسم کے لوگ داخل ہوتے ہیں، یعنی ان کے گھروں کے اندر لوگ داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ زمانے میں حجاب تو تھا ہی نہیں نا، رائٹ. تو عمر رضی اللہ عنہ کے یہ موافقات عمر میں سے ہے، ٹھیک ہے، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے بات فرمائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آیت قرآن نازل فرما دی. صحیح بخاری باب غزوہ موطأ میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ اور جعفر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر سخت غم و صدمہ کے آثار تھے، ٹھیک ہے. کزنس تھے، کتنے بہترین یہ دوست اور صحابی تھے، تینوں کے تینوں کا انتقال ہو گیا. کہ بھائی وہ اس نے ایک ایک کو جھنڈا دیا تھا تو ان کا، وہ جب شہید ہوئے تو ان کا جھنڈا دوسرے نے لے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر ان کا جھنڈا تیسرے نے لے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر چوتھے نے لے لیا، ٹھیک ہے. تو یہ وہی والا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر سخت غم و صدمہ کے آثار تھے. میں حجرے کے اندر دروازے کی ایک شق یعنی ریخ سے یہ سب ماجرا دیکھ رہی تھی، یعنی مردوں کے مجمع کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھی. اس سے ثابت ہوا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا اس حادثے کے وقت بھی باہر آ کر برقعے کے ساتھ مجمع میں شامل نہیں ہوئیں، بلکہ دروازے کی شق سے اس جلسے کا مشاہدہ کیا، ٹھیک ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، عورتیں بھی جمع ہو جاتی ہیں، مرد بھی جمع ہو جاتے ہیں جب ایسا کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے. صحیح بخاری کتاب المغازی عمرۃ القضاء کے بعد میں ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ بھانجے نہیں تھے، یعنی یہ محرم نہیں تھے، پہلے والے محرم تھے. مسجد نبوی میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے باہر متصل تشریف رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، بالکل باہر دروازے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یا دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں کے متعلق باہم گفتگو کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. ایسی کئی حدیثیں بخاری شریف کے اندر بھی ہیں کہ جس کے اندر کے جو محرم تھے وہ تو اندر چلے گئے اور غیر محرم باہر تھے، یا ایسا بھی تھا کہ محرم اور غیر محرم دونوں ہی باہر بیٹھے، ٹھیک ہے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی درمیان میں ہم نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی مسواک کرنے اور حلق صاف کرنے کی آواز حجرے کے اندر سے سنی. آگے واقعے میں عمرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آیات حجاب نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات کا معمول یہ ہو گیا تھا کہ گھروں میں رہ کر پردہ کرتے، ٹھیک ہے. اسی طرح صحیح بخاری باب غزوۃ الطائف میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کے برتن میں کلی کر کے ابو موسیٰ اور بلال کو عطا فرمایا کہ اس کو پی لیں اور اپنے چہرے پر مل لیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا پردے کے پیچھے یہ واقعہ دیکھ رہی تھیں. انہوں نے اندر سے آواز دے کر ان دونوں بزرگوں سے کہا کہ اس تبرک میں سے کچھ اپنی ماں یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے لیے چھوڑ دینا. یہ حدیث بھی شاہد ہے کہ نزول حجاب کے بعد ازواج مطہرات گھروں اور پردوں کے اندر رہتی تھیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ گھروں اور پردوں کے اندر رہتی تھیں اور لوگوں کے سامنے نہیں آ جایا کرتی تھیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ بات بھی تو ثابت ہو گئی نا کہ دیکھتی تھی، رائٹ، دیکھ لیا کرتی تھی مردوں کو، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات کیا ثابت ہے کہ بات بھی کر لیا کرتی تھی، ٹھیک ہے. جیسے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آواز دے کر کے فرمایا نا، تو آواز کا پردہ وہ بھی نہیں تھا اور دیکھنے کا پردہ بھی نہیں تھا عورتوں کا مردوں کو، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر بھی شرائط ہیں. آواز کے پردے کی تفصیل ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ایک لچدار بنا کر کے آواز، ٹھیک ہے نا، آواز کو ذرا ایسے بنانے سے منع کیا گیا. گانے کی آواز، نعت پڑھنے کی آواز، اس میں تو پھر وہ نسوانیت آ جاتی ہے کہ وہ معاملہ ویسے ہی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، گانے اور نعت کے اندر، تو اس کو منع کیا گیا ہے. عام بات چیت جو کہ ضرورت کے تحت ہوتی ہے اس کو منع نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے. حتیٰ کہ یہاں پر مباح ہے، کوئی ایسا کوئی فرض اور واجب تو نہیں تھا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے لیے کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پئیں، ٹھیک ہے نا، لیکن مباح تھا اور قابل تبرک تھا، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی بات کرنا جو ہے وہ جائز سمجھا گیا، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے دین کا علم والا معاملہ بھی آ جائے گا اس کے اندر. اور دین کا علم جو ہے وہ مسائل کے اعتبار سے تو فرض اور واجب ہو جاتا ہے, لیکن جو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے جو علم ہے وہ مباحات میں سے تو آتا ہے نا. ٹھیک ہے. اور دیکھنے کا بھی معاملہ یہی ہے کہ شہوت کے ساتھ دیکھنا یہ منع ہے. اچھا, اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ وہ حدیث آپ کو معلوم ہے, ٹھیک ہے نا, سبھی کو معلوم ہے کہ جی وہ جو یہی عبسہ وتولیٰ والی صورت والے جو صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے, وہ آ رہے تھے گھر کے اندر اور دو صحابیات یتیم ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی, تو نبی علیہ السلام نے ان کو پردہ کرنے کے لیے کہا, ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے سوال بھی کیا کہ جی یہ تو نابینا ہے, یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا, تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو, رائٹ. تو اس کے اوپر پھر کیا ہوا کہ جی مردوں کو دیکھنا منع, ٹھیک ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہے نا. اچھا, یہ تو ایک حدیث ہے, قرآن کی وہ آیت بھی تو ہے, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, ٹھیک ہے, کہ اپنی عورتوں کو کہہ دو کہ جی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں, ٹھیک ہے. تو دیکھیں کیسی کیسی چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں, ان کو آپ علماء کے لیول پر جا کر کے اجتہاد اور تفقہ کے بغیر ان کو ریکنسائل نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. ایک طرف جو ہے صحابیات کا یہ عمل نظر آتا ہے, دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل نظر آتا ہے, تیسری طرف آپ کو قرآن کا یہ حکم نظر آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کی تطبیق کرنا, ان کو سمجھنا جو ہے عام کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے, یعنی اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معاملات رکھے ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے علماء کی محتاجی کی ضرورت پڑے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان تھا کہ ایسا کوئی کمپلیکیٹڈ معاملہ رکھتے ہی نہ, ہر چیز کو اتنا سمپل کر دیتے کہ جی کسی کی پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی, لیکن اللہ نے سمپل نہیں رکھا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر علماء کا پھر جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے نا, ان ایکسپلینیشن کو پھر سننا پڑتا ہے, ان کو سمجھنا پڑتا ہے, ان سے پوچھنا پڑتا ہے, ان کے بغیر دین پہ عمل نہیں ہو سکتا. یہ حدیث بھی شاید ہے کہ نزول حجاب کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما عنہن گھروں اور پردوں کے اندر رہتی تھیں. فائدہ, اس روایت سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے. اچھا, ایسا ہے کہ ٹائم تقریباً ختم ہونے والا ہے اور یہ ٹاپک ایک کلاس کم از کم اور لے گا. یہ پیج پڑھ لیتے ہیں, 2 منٹ ہیں. فائدہ, اس روایت میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات کی ایسی شائق تھیں جیسے دوسرے مسلمان. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی کی خصوصیت تھی, ورنہ بیوی سے جو بے تکلف تعلق شوہر کا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کے تقدس و تعظیم کا یہ درجہ قائم رہنا عادتا ناممکن ہے, ٹھیک ہے. تقدس و تعظیم جو ہوتی ہے نا, وہ شوہر کے لیے رہنا جو ہے وہ تقریباً عادتا ناممکن ہے, لیکن ایکسیپشنز ہوتی ہیں, جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا معاملہ رکھتی تھیں. اسی طریقے سے جو بہت زیادہ ترقی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام بھی عطا فرما دیتا ہے کہ ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مریدنوں جیسی سلوک کرنے شروع ہو جاتی, ٹھیک ہے نا. حضرت جی کے بارے میں ہم نے یہی سنا کہ اما جان کا حضرت جی کے ساتھ ویسے تو نہیں بھی ہے ایکچولی, بے تکلفی اور وہ معاملہ بھی ہے, لیکن تقدس تعظیم والا معاملہ بھی ہے. جیسے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقدس والا معاملہ بھی تھا, لیکن بے تکلف والا معاملہ بھی تھا, ٹھیک ہے. لیکن تقدس و تعظیم جو ہے نا عموماً بیوی اور شوہر کے درمیان نہیں ہوتی ہے. بیوی کو بہت برداشت کرنا پڑتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا, بہت برداشت کرنا پڑتا ہے. حتیٰ کہ یعنی شوہر کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت ہی ذلت آمیز حرکتیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا اس کے ساتھ ذلیلوں والا برتاؤ نہیں کرتی ایک نیک عورت, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا. صحیح بخاری کتاب الادب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی سوار تھیں. راستے میں اچانک اونٹ کے ٹھوکر لگی. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اونٹ سے گر گئے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دے, آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, تم عورت کی خبر لو. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اپنا چہرہ کپڑے میں چھپایا, ٹھیک ہے نا, سبحان اللہ کیسے تھے یہ لوگ, اپنا چہرہ کپڑے میں چھپایا. फिर हजरत सफी अल्लाह के पास पहुंचे और उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया, ठीक है ना। यानी अपनी विजन को जो है ना जितना ब्लर कर सकते थे, ये नहीं कि भाई ऐसा छुपा लिया कि अब नजर ही कुछ नहीं आ रहा, वरना तो फिर उल्टा वो भी गिर जाते, ठीक है ना। तो उन्होंने कपड़ा डालने का क्या मकसद हुआ कि अपना विजन जो है ना वो जितना मेरा ब्लर, जिसको ब्लरी विजन कहते हैं ना, कि आप क्लियर नजर ना आ सके, इतना बस नजर आ सके कि मैं खुद किसी पत्थर से टकरा करके गिर ना जाऊं, लेकिन इतना नजर आ सके कि वो कहाँ हजरत सफी रतनान पड़ी हुई है वहां तक तो मैं पहुंच सकूं ना, ताकि नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील भी हो जाए, राइट। तो ऐसे कपड़ा डाल दिया, फिर उनके ऊपर जाकर ये कपड़ा डाल दिया, तो वो खड़ी हो गई। फिर इसी तरह पर्दे में मस्तूर उनको उनकी सवारी पर सवार किया, ठीक है। इस वाकये में भी जो एक हादसे की सूरत में अचानक पेश आया, सहाबा कराम और अज़वाज मुतहरात का पर्दे के मामले में इतना एहतमाम, इसकी बड़ी अहमियत का शाहिद है। और जामे तिर्मिजी में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अताने की हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा खरजत المرأة استشرفها الشيطان, ठीक है, कि मानी यह है कि औरत जब घर से निकलती है तो शैतान उसको ताक लेता है। ताक लेता है का मतलब क्या, कि शैतान बदनजरी नहीं करता, शैतान का तो वो तो वैसे ही उसको सब कुछ नजर आता है, ठीक है। ताक लेने का मतलब ये होता है कि अब उसको बहाना बनाता है मुसलमानों में बुराई फैलाने का, यानी सबब बना करके उसको, फिर जो मर्द होते हैं उनके दिल में जाकर के वसवसे डालता है, कानों में वसवसे डालता है कि इसको देखो और ये ऐसी है और ये वैसी है, ठीक है। इब्ने खुजैमा व इब्ने हब्बान ने इस हदीस में ये अल्फाज भी नकल किए हैं, व अक्रबू मा तकूनु मिन वजही रब्बिहा वहिया फी कअरे बैतिहा, यानी औरत रब से सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होती है जब वो अपने घर के बीच में मस्तूर हो, मस्जिद नबवी में नहीं होती, मस्जिद हराम में नहीं होती, अपने घर में होती है। अल्लाह ताला ने उसको घर वाली बनाया है, मस्जिद वाली नहीं बनाया। इस हदीस में भी इसकी शहादत मौजूद है कि असल औरतों के लिए यही है कि वो अपने घरों में बैठें, बाहर ना निकलें। एक और हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लैसा लिन्निसाई नसीबुन फिल खुरूज इल्ला मुज़्ज़र्रा, कि यानी औरतों का बाहर निकलने के लिए कोई हिस्सा नहीं बजुज इसके कि बाहर निकलने के लिए कोई इस्तेरारी जरूरत पेश आ जाए, ठीक है। तो इस्तेरारी जरूरत की डेफिनेशन, बस वही वही बात आ जाती है कि जरूरत की डेफिनेशन जो है वो हम खुद से करें, हम किसी जाहिल से मशवरा करें, या हम अपने उलमा से या अपने शेख से मशवरा करें कि जी जरूरत क्या चीज है मेरे लिए, व्हाट इज नेसेसरी, ठीक है ना, मेरे दीन के लिए, मेरी दुनिया के लिए क्या चीज नेसेसरी है, और जैसा कि जैसा हमें मशवरा दें तो उसके मुताबिक ही पेश आए, यानी उसके मुताबिक ही पे अपना अमल करें, ठीक है। तो ये इस्तेदाराई जरूरत जो है ये एक एक ब्रॉड टर्म है, इसको डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है कि जी व्हाट इज एन इस्तेदाराई जरूरत, ठीक है। तो अगर अपने अनबायस्ड यानी नफ्स से बायस होकर के अगर हम खुद फैसला, नफ्स से बायस हुए बगैर अगर हम खुद एक राइटली राइटियस फैसला कर सकते हैं कि जी हाँ ये मेरी जरूरत है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम किसी चीज के अंदर फैसला नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, वेरी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि भाई क्या ये वाकई मेरी जरूरत है, क्या ये वाकई मेरी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो फिर मशवरा कर लें अहले इल्म से, जिसको अहले मशवरा क्या कहा जाता है उससे, ठीक है। बाकी ये हदीस जो है वो अभी हमने पढ़ ली थी फातिमा के बारे में, वो अभी मतलब सुन ली थी हमने। तो इसके बाद जो वाकया इफ का है ये फिर हम इंशाल्लाह, बल्कि नहीं, एक पैराग्राफ है आज निपटा देते हैं ताकि दूसरा दर्जा बाकी क्लास में पढ़ सकें। वाकया इफ में जो सबब हजरत सिद्दीक रतना के जंगल में रह जाने का पेश आया वो यही था कि अजवाज मुतहरात का पर्दा सिर्फ बुरका चादर ही का नहीं था, बल्कि वो सफर में भी अपने हौदज शगदफ में रहती थी। ये शगदफ ही ऊंट के ऊपर सवार कर दिया जाता था और इसी तरह उतारा जाता था। शगदफ मुसाफिर का मिसल मकान के होता है। इस वाकये में जब काफिला चलने लगा तो हस्बे आदत खादिमों ने शगदफ को यह समझकर ऊंट पर सवार कर दिया कि उम्मुल मोमिनीन इसके अंदर मौजूद है, और वाकया ये था कि वो इसमें नहीं थी, यानी हकीकत ये थी कि वो नहीं थी मौजूद, बल्कि तबी जरूरत के लिए बाहर गई हुई थी, ठीक है, यानी तबी जरूरत के लिए बाहर जाना इसकी इजाजत थी तो वो गई हुई थी, और वाकया ये था कि वो उसमें नहीं थी बल्कि बाहर गई हुई थी। इस मुगालते में काफिला रवाना हो गया और उम्मुल मोमिनीन जंगल में तन्हा रह गई। ये वाकया भी इस बात का कवी शाहिद है कि हिजाब शरई का मफहूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अजवाज मुतहरात ने यही समझा था कि औरतें अपने मकानों में सफर में हों तो अपने शगदफ में रहें, इनका वजूद मर्दों के सामने ना आए। और जब सफर की हालत में हिजाब अशखास का ये एहतमाम था तो हजर में कितना अहतमाम होगा, जब आप सफर की हालत में नहीं है तो फिर कितना अहतमाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास रोकते हैं, अगर कोई सवाल वगैरह हो उसके मुताबिक तो फिर आप अगली क्लास में, अगर जनरल सवाल हो तो अगली क्लास में कर लें, और अगर कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो व्हाट्सएप पे भेज करके कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम।